ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी क्लास होगी, पौने नौ बजे तक निकलना चाहते हैं यहाँ से। हाँ तो मैं पौने नौ तक रहूंगा, फिर नौ बजे तक पहुंचना है। तो स्टीवन मालूम चाहिए। ओके ओके ओके, हाय कृष्ण। और कहाँ फंक्शन रहा तो काफी लेट कर रहा हूँ। हाय करा वो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 5 टेक्स्ट 41।
नहीं अनुभूय, अनुभव करके, ना नहीं जानाते, जानता है, कुमान पुरुष विषय तीक्ष्णता भौतिक भोग की तीक्ष्णता, निर्विद्यते कट जाता है, स्वयं स्वयं तस्मात उससे, न तथा उस तरह का नहीं, भिन्न दीही बदली हुई बुद्धि वाला, परई ही अन्य द्वारा। तात्पर्य निसंदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथा कथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने में ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित समझेगा। जिनके मन अन्य द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति। तात्पर्य यह कहा जाता है कि जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती वह शिशु को जन्म देने के कष्ट को नहीं समझती। बंध्या की बुद्धि पे प्रसव वेदना, बंध्या शब्द का अर्थ है बांझ औरत। ऐसी स्त्री शिशु को जन्म नहीं दे सकती तो भला वह प्रसव पीड़ा का कैसे अनुभव कर सकती है। प्रजापति दक्ष के विचारधारा के अनुसार स्त्री को पहले गर्भवती होना चाहिए और तब शिशु प्रसव की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए। तब यदि वह बुद्धिमती है तो वह पुनः गर्भवती नहीं होगी। किंतु वास्तव में तथ्य यह नहीं है। यौन सुख इतना प्रबल है कि स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु जन्म के समय कष्ट पाती है, किंतु अपने इस अनुभव के बावजूद वह पुनः गर्भवती होती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारा के अनुसार मनुष्य को पहले भौतिक भोग में अपने को लिप्त करना चाहिए, जिससे ऐसे भोग के कष्ट का अनुभव करने के बाद वह स्वतः विरक्त बन जाएगा। किंतु भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि मनुष्य पग पग पर कष्ट भोगने पर भी भोग करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं करेगा। तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख बाजाह। ऐसी स्थिति में जब तक नारद मुनि या गुरु परंपरा के उनके सेवक की संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य के सुप्त वैराग्य भावना को जागृत नहीं किया जा सकता। यह तथ्य नहीं है कि चूंकि भौतिक भोग में अनेक कष्ट पर स्थितियां निहित होती है, इसीलिए मनुष्य स्वतः विरक्त हो जाएगा। मनुष्य को नारद मुनि जैसे भक्त के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तभी वह भौतिक जगत के प्रति अपनी आसक्ति से विरक्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के तरुण तरुणियों ने भौतिक भोग की भावना का परित्याग किसी अभ्यास से नहीं किया, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके सेवकों की कृपा से किया है। अनुवाद किसे धराइए? निसंदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने में ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित समझेगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति। सभी अपने मोबाइल फोन बंद कर दें।
तो आप इस अध्याय में पढ़ रहे हो दक्ष के पुत्रों का की कथा, और किस प्रकार दक्ष के पुत्रों ने पिता के आदेश का विरोध किया, क्योंकि प्रभावित हो गए थे। किसकी शिक्षा थी? नारद मुनि की शिक्षा थी। तो दक्ष जो है वो प्रजा के उत्पादन में बड़ा एक्सपर्ट है, और दक्षा ने पहले 10,000 पुत्र पैदा किए थे जिनका नाम था त्रियेश्वर। और दक्षा की इच्छा थी कि ये पुत्र भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, पर इतनी बुद्धि थी, साउंड ठीक है, इतनी बुद्धि थी कि दक्षा ने पहले ये निर्णय किया कि इन्हें पहले तपस्या का पालन करने दो। उन्हें तपस्या का पालन करने दो, क्योंकि अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करना चाहते हो तो पहले आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, तपस्या का पालन का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति नहीं रहेगा, गृह मेरी बन जाएगा। दक्षा ने अपने 10,000 बेटों को हरेश्वर जिनका नाम था भेजा था नारायण सरस में तपस्या का पालन करने के लिए। और नारायण सरस एक स्थान था जहाँ की संत महात्मा आते थे तपस्या का पालन करने के लिए। और दक्षा के पुत्र जब वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पहुंचकर तपस्या की, रोज वहां स्नान करते थे, मंत्र का उच्चारण और बड़ी गहरी तपस्या, की तपस्या क्या थी? केवल जल पीते थे बस, और खाने के लिए क्या, ताजी हवा। आजकल तो आपको ताजी हवा भी नहीं मिलेगी, उस समय ताजी हवा संभव थी। जैसे जब ध्रुव महाराज गए मधुबन जंगल में, उन्होंने भी इसी प्रकार की तपस्या का पालन किया। पहले महीने क्या खा रहे थे, सूखा फल जानवर खाते हैं, अगले महीने सूखा घास, फिर तीसरे महीने सिर्फ थोड़ा सा जल 9 दिन में एक बार, तो चौथे महीने जल भी पीना बंद कर दिया था। तो ये शक्ति थी प्राचीन समय में भक्तों में। तो जो दक्ष के पुत्र थे हर्याश्वर, इन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की, और इनका जो स्वभाव था बड़ा जेंटल था, संतों के समान। तो नारद मुनि तो जैसे आप जानते हो ठीक समय पर हर स्थान में पहुंच जाते हैं। तो ध्रुव महाराज भी घर छोड़ कर जा रहे थे भगवान को खोजने के लिए, नारद मुनि जी वहां पहुंच गए इन्हें शिक्षा देने के लिए। तो नारद मुनि ने देखा इन भाइयों को और उन्होंने कहा इनको गृहस्थ आश्रम में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। गृहस्थ आश्रम में चाहे कितना भी आध्यात्मिक ज्ञान हो, अगर आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति बच सकता है तो ज्यादा बेहतर है, पर अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो भी वो भगवान के शरणागत होना चाहे तो हो सकता है। तो नारद मुनि ने सोचा कि इन भाइयों को ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहिए, ये ब्रह्मचारी जीवन के योग्य हैं। और नारद मुनि ने उन्हें थोड़ी संगत दी, जिसके द्वारा भाइयों के मन में 10,500 भाइयों में एक प्रकार का भाव था भक्ति योग। जैसे आप भागवत में देखते हो 34 स्कंध में ये प्रचेतस महाराज प्रचंडवाणी के 10 पुत्र थे, और उन्होंने तपस्या का पालन किया था, मंत्रों का उच्चारण जो शिव जी ने दिया था। भगवान इतने प्रसन्न हुए थे उनकी तपस्या से, भगवान ने अपने दिव्य दर्शन दिया, कहा मैं तुम सब भाइयों से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सब भाइयों का एक ही भाव है, क्या, शुद्ध भक्ति। इसी प्रकार वो तो 10 भाई थे, यहाँ पढ़ रहे हो रक्षा के 10, ये 10,000 पुत्र थे, 10,000 भाई। ये सारे 10,000 भाइयों का एक ही भाव था, एक ही स्वभाव। वो जो बड़े प्रभावित हुए थे भक्ति की शिक्षा से, और जब नारद मुनि मिले उन्हें तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया, क्या, कि हमने घर नहीं लौटना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना, हमने तो ब्रह्मचारी रहना। और हालांकि एक तरफ से पिता का आदेश का पालन करना चाहिए, जैसे दक्षा कहते हैं इस अध्याय में कि हर व्यक्ति को पिता और देवताओं के प्रति जो आभार है उसको पूरा करना चाहिए, और संतों के प्रति। पर भागवतम के 11वें स्कंध में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भगवान के शरणागत हो जाए तो फिर ये जो अनेक जिम्मेदारियां हैं देवता देवियों के प्रति, उनको हम भूल सकते हैं, अगर आप तन मन धन से भगवान के शरणागत हो जाओ। तो एक तरह से कहा जाता है कि भौतिक वातावरण में जो हमारा भार है पिता के प्रति वो हमें चुकाना चाहिए, देवताओं के प्रति चुकाना चाहिए, संतों के प्रति, क्योंकि संतों ने हमें शिक्षा दी है। पर अगर आप भगवान श्री कृष्ण के शरणगत हो जाओ शास्त्रों के अनुसार, फिर इस अभार की आवश्यकता नहीं। जैसे कि 33 करोड़ देवता हैं, और एक रूप से सब देवताओं के प्रति हमारा भार है। इंद्र जी हमें एक वर्षा देते हैं, सूर्य के देवता विवासवान हमें सूर्य की रोशनी देते हैं, आपका थोड़े घंटों के लिए बिजली इस्तेमाल करते हो तो महीने के आखिर में इतना बड़ा बिल आ जाता है। अंदाजा लगाओ अगर विवाह आपको बिल देना शुरू करें तो कितना भारी बिल होगा। चंद्रमा के प्रति रात को रोशनी प्राप्त होती है, उसका भी हमने उनका भी कर्जा चुकाना है। तो अनेक देवताओं के प्रति हमारा आभार है। अगर आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो तो सारे 33 करोड़ देवता देवियों के प्रति जो आभार है सबको आप चुका देते हो। तो एक रूप से हर पुत्र की जिम्मेदारी बनती है पिता के प्रति, देवताओं के प्रति, संतों के प्रति। तो अगर वो भगवान के शरणागत हो जाए तो फिर वो कोई सब जिम्मेदारियों को निभा रहा है। तो रक्षा के पुत्रों ने निर्णय कर लिया कि उन्होंने घर नहीं लौटना। और जब दक्षा को सूचना पहुंची, सूचना किसने दी? नारद मुनि ने दी। नारद मुनि ने उन्हें प्रभावित किया और नारद मुनि ने वो ये सूचना दी कि आपके बेटे तो घर नहीं लौट रहे। उन्होंने तो निर्णय कर लिया नारायण सरस में ही रहेंगे, तपस्या का पालन करते जाएंगे। तो जब दक्षा को ये सूचना मिली तो बड़े क्रोधित हो गए, जैसे आज के वातावरण में और इन श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं। आज के वातावरण में जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो माता पिता निराश भी हो जाते हैं, और अगर कोई बेटा धन कमाने में आगे बढ़ जाए बड़े प्रसन्न होते हैं। तो दक्षा को जब सूचना मिली नारद मुनि के द्वारा कि उनके पुत्र घर नहीं लौट रहे, वो बड़े क्रोधित हो गए थे। मैंने उन्हें भेजा था तपस्या का पालन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, और उन्होंने इनकार कर दिया घर आने से। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने दक्षा को कहा, अरे गुस्से क्यों हो रहे हो, तुम और बच्चे पैदा करो। दक्षा के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और दक्षा ने फिर एक साथ 1000 बेटों को फिर से पैदा कर दिया, जिनका नाम था 1,250। और दक्षा की इच्छा क्या थी, ये 11,000 बेटे भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। और इतनी बुद्धि थी दक्षा के पास, उन्हें भी उन्होंने कहा पहले जाकर तपस्या करो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। फिर जब ये दूसरे बैच ये गए तपस्या का पालन करने के लिए, तो ये जो छोटे भाई थे इनमें भी बड़े भाई का ही भाव था। तो नारद मुनि वहां आए फिर से। नारद मुनि ने देखा ये तो बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे, उन्होंने देखा कि इनका भी चरित्र बड़ा शांत है, इनमें भी भक्ति भावना है, इनमें भी वही गंभीरता है जो बड़े भाइयों में थी, और ये भी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, और ये भी तपस्या केवल जल पी रहे थे और ताजी हवा। तो नारद मुनि ने उन्हें डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने बड़े भाइयों की तारीफ की और उनकी थोड़ी सी संगत से इन भाइयों ने भी निर्णय कर लिया क्या कि हमने भी घर नहीं लौटना, हमने भी ब्रह्मचारी रहना है और हमने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना। तो दक्षा को सूचना मिल गई, उन्होंने देखा बहुत एक वातावरण के द्वारा उन्हें सूचना मिल गई कि जो ये दूसरे बैच था उनका वो भी वापस घर नहीं आ। रुद्राक्ष भी बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित किस पर हुए? नारद। उन्हें आगे कल के श्लोक में आप देखोगे दक्ष उनको श्राप दे रहा है। तो दक्ष बड़े क्रोधित हुए और पिछले कई श्लोकों से दक्षा का उच्चारण हो रहा है और दक्षा ये समझा रहे हैं नारद मुनि को, ये समझा रहे हैं कि केवल कपड़े बदलने से व्यक्ति साधु नहीं बनता। तो आपके माँ बाप यही कहते हैं कई बार जब आप भक्ति में छोड़ते हो, और दक्षा ये भी कहा कि तुम समझते हो तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा ज्ञान है, वो जान तुम ये नहीं जानते कि मैं कितना गहरा भक्त हूं भगवान। तो दक्षा हमें उपदेश दे रहे हैं और एक रूप से देखा जाए जो उपदेश दे रहे हैं ठीक भी कह रहे हैं। जैसे आज के श्लोक में कह रहे हैं निसंदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है। तो अगर आप केवल ये एक लाइन को पकड़ो कि भौतिक भोग ही सब दुखों का कारण है, ये तो सत्य है। जब तक आप भौतिक भोगों के कार्य में जुड़े रहोगे, जब तक आप अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ेगा आपको। जैसे कि भगवान ऋषभदेव जी भागवतम के पांच स्कंद में कहते हैं नूनम प्रमता कुरुते विकर्मा, कि जो व्यक्ति विकर्मिक कार्य करता है, विकर्मिक कार्य का अर्थ है कार्य जो कि शास्त्र के विपरीत है। तो जो व्यक्ति भौतिक भोग के कार्य में जुड़े रहते हैं वो एक रूप से शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और ऋषभदेव जी कहते हैं जो ये विकर्मिक कार्य कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो ये नहीं जानते कि आज जो ध्येय उनके पास उन्हें कष्ट दे रहा है और इन कार्यों में जुड़कर फिर से ध्येय प्राप्त होगा जो केवल उन्हें कष्ट देगा। तो यही विचार यहां प्रकट किया जा रहा है, भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है। तो जब तक आप भौतिक भोग के कार्य में जुड़े रहोगे, जब तक आपको गुजरना पड़ेगा एक ध्येय से दूसरे ध्येय में, आज को एक प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा, कल किसी और प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। ब्रह्मांड ब्रह्मित को न भगवानो जी ब्रह्म, हम अनेक योनियों में गुजरते रहेंगे। पर आगे जाकर दक्षा ये कह रहे हैं कि भौतिक भोग ही कष्टों का कारण है, पर हमें खुद अनुभव करना चाहिए कि भौतिक भोग द्वारा कष्ट ही प्राप्त होगा। जब आप खुद अनुभव करोगे, जब आप त्यागोगे, तुम्हारे उपदेश देने से थोड़ी त्यागेंगे। वो कहते हैं ज्यादा बेहतर है इनको पहले भौतिक भोग करने दो, फिर वो देखेंगे ये दुखों का कारण है और फिर वो खुद ही कहेंगे हाँ 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 भौतिक भोग से बचना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं तात्पर्य में, और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक भोग, हम भौतिक कष्टों को अनुभव कर रहे हैं भौतिक भोग के कारण, तो कौन समझता है कि ये कष्टों का कारण? कोई समझता है? हम अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव कर रहे हैं। जब भी हमारे हृदय में यही इच्छा रहती है क्या कि भौतिक भोग के कार्य में जुड़े रहे, तो दक्षा ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि नारद मुनि की संगत के द्वारा, नारद मुनि के प्रभाव के द्वार के कारण उनके पुत्रों ने भौतिक भोग की भावना बचपन से ही त्याग दी। पिता की इच्छा थी कि बचपन में थोड़ी तपस्या करेंगे फिर गृहस्थ आश्रम में जुड़ेंगे, भौतिक भोग के कार्यों में जुड़ेंगे, और फिर अगर छोड़ना हो तो छोड़ेंगे। पर नारद मुनि के प्रभाव से बेटों ने छोटी आयु में ही निर्णय कर लिया कि हमें भौतिक भोग में जुड़ने की आवश्यकता नहीं। तो भौतिक भोग दुखों के कारण जरूर बनते हैं, क्योंकि जब तक आप भौतिक भोग के कार्य में जुड़े रहोगे, जब तक आपको किसी न किसी योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, और भौतिक संसार में चाहे आप कहां भी जन्म लो, चाहे आप समाज में बड़ा ऊंचा पद भी प्राप्त कर लो, सात प्रकार के कष्टों से आप बचा सकते हो, नहीं बचा सकते। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भौतिक भोग के कार्य में नहीं जुड़ता। वो जानता है कि भौतिक भोग के कार्य जो हैं, वो ये कष्टों के कारण है। भौतिक भोग के द्वारा जो कष्ट हम अनुभव करते हैं दो प्रकार के हैं। एक है कष्ट क्योंकि हम शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो इसके कारण कर्मों पर आधारित हमें एक ध्येय प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा कष्ट क्या है, ये भौतिक भोग के कारण ही अनेक बीमारियां भी होती हैं। उदाहरण के लिए आपको सिगरेट पीने की आदत है, तो सिगरेट गुटखा खाने की आदत है तो अच्छी संभावना है कि कैंसर भी हो जाएगी, है ना। आप शराब पीना चाहते हो तो शराब पीने की आदत है तो शराब का भी परिणाम है। आप बिना भेदभाव के भोग विलास इत्यादि में जुड़ना चाहते हो तो उसका भी परिणाम है। तो भौतिक भोग को देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से केवल कष्ट ही है। तो ये आवश्यक नहीं पहले हम 20-25 साल बिताएं भौतिक भोग के कार्य में, फिर हम देखेंगे हाँ ये तो हमें कष्ट दे रहा है तो चलो अभी हमें संन्यास लेना चाहिए। ये कभी ऐसे होता नहीं, क्योंकि भौतिक भोग का ऐसा परिणाम है कि हम कष्ट में हैं तो भी ये इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं छूटता। इस विषय में प्रभुपाद जी हमें एक उदाहरण देते थे कि एक समय मुसलमान राजा अकबर ने पूछा अपने प्रधानमंत्री से कि जो भौतिक आकर्षण है कब तक रहता है, और प्रधानमंत्री ने कहा समाप्ति तक, जीवन की समाप्ति तक। तो राजा ने पूछा क्या बूढ़ी उम्र में भी रहता है, उन्होंने कहा हाँ। तो एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा से कहा चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में, साथ में अपनी बेटी को ले चलना। और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे उस बीमार मरीज के पास तो देखना कि उसकी आंखें किधर हैं। और जब वो गए हॉस्पिटल में तो राजा ने देखा कि वो ज्यादा देख रहा था उनकी बेटी की तरफ, तो समझ गए कि प्रधानमंत्री यहाँ क्यों लाया है। तो भौतिक भोग की इच्छा, कई आध्यात्मिक वाली भी, नाम के आध्यात्मिक वाली ये कहते हैं पहले भौतिक भोग अनुभव करो फिर त्याग की भावना उत्पन्न होगी। पर शास्त्रों के अनुसार हमें भौतिक भोग की भावना को छोटी आयु से ही समाप्त कर देना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि 10-20 सालों के लिए हमें भौतिक भोग के कार्य में जुड़ने दो फिर हमारे मन में त्याग की भावना उत्पन्न होगी, ये असंभव है। और इस विषय की चर्चा कृपा जी तात्पर्य में कर रहे हैं, भौतिक भोग का इतना गहरा प्रभाव है कि आप जिंदगी भर करते जाओ और अंत तक ये क्या इच्छा रहेगी, ये भौतिक भोग में ही जुड़े रहो। आजकल पश्चिम देशों में कई विज्ञानी हैं जिन्होंने ये सिद्धांत निकाला है कि भौतिक भोग की इच्छा जिंदगी की समाप्ति तक नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं बुढ़ापे पर में ये बीमारियां जो हैं कम हो जाएंगी अगर तुम बुढ़ापे पर में भी भौतिक भोग के कार्य में जुड़े रहोगे। और आजकल वेस्टर्न पश्चिम देश में ये भाव बड़ी तेजी के साथ डॉक्टरों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, भौतिक भोग की इच्छा भावना को कभी नहीं छोड़ो। हमारे शास्त्र में तो कहा गया है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, पर आधुनिक युग के वैज्ञानिक कह रहे हैं भौतिक भोग की इच्छा बुढ़ापे पर भी नहीं छोड़नी चाहिए। कह रहे मत छोड़ो। तो यहां दक्षा उपकोट दक्षा आगे क्या कह रहे हैं श्लोक में, आगे कह रहे हैं किसी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, खुद ही खुद वो समझ जाएंगे कि भौतिक भोग कष्टों का कारण है और खुद ही छोड़ देंगे। ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नारद मुनि ने उनके बेटों को प्रभावित किया त्याग के प्रति। तो आगे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, समझाते हैं कि साधु संग की आवश्यकता। इन दो 10,000 बेटों का और आगे 1,000 बेटों का उद्धार कैसे हुआ, नारद मुनि की संगत के द्वारा। साधु संग सद्धु संग सर्व शास्त्र काया, राम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आया। तो इसीलिए भक्तों की संगत में हमें रहना चाहिए, और अगर हम भक्तों की संगत में रहेंगे तो भक्ति भावना बढ़ेगी। तो दक्षा बड़े क्रोधित थे नारद मुनि के प्रति, और बड़े कठोर शब्दों में उन्होंने नारद मुनि की आलोचना की। और नारद मुनि का क्या था स्वभाव, बिल्कुल सहनशील। नारद मुनि ने सारी बेइज्जती सह ली। अगर नारद मुनि चाहते तो वो भी चिल्ला सकते थे दक्षा के ऊपर, है ना, तुम क्या शिक्षा दोगे मुझे। तो नारद मुनि ने सब कुछ सह लिया। तो भक्त को अत्यंत सहनशील होना चाहिए, खास करके जो वो प्रचार के कार्य में जुड़ता है। जब वो प्रचार के कार्य में जुड़ता है तो आपको कई दक्षा मिलेंगे जो आपका विरोध करेंगे, जो अड़चन डालेंगे। जैसे कि जब नित्यानंद और हरिदास ठाकुर भी घर घर प्रचार कर रहे थे, ये थोड़ी कि सबने उनका स्वागत किया, कईयों ने उनका स्वागत किया, कईयों ने उनको दोष दिया तुम जासूस हो। जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद पहली बार भारत में आए थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, उस समय लगभग सारे शिष्य अमेरिकन थे, कोई रशियन शिष्य नहीं था उस समय। और जब हम भारत में आए थे तो भारत में उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका संबंध रूस से ज्यादा गहरा था, अमेरिका से ज्यादा ठंडा था। तो पूरे भारत में ये प्रोपेगेंडा हो गया, ये अमेरिकन CIA एजेंट आ गए हैं हिंदुस्तान में। CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और पार्लियामेंट में भी 2-3 दफे ये प्रश्न उठाया गया था, ये कौन है ये। तो एक समय होम मिनिस्टर रेड्डी, कोई नाम ब्रह्मानंद रेड्डी, तो उन्होंने कहा हमें पूरा खोज लिया है और पूरा विश्वास है हमें ये CIA एजेंट नहीं है। उस समय कई लोग सोचते थे ये CIA एजेंट आ गए हैं साधु के वस्त्र में भारत में जासूसी करने के लिए। तो इसी प्रकार जब नित्यानंद और हरिदास ठाकुर घर घर जा रहे थे तो कई कहते थे ये जासूस आ गए हैं ये देखने के लिए कि हमारे घर में क्या है, फिर बाद में आएंगे चोरी करने के लिए। तो जब हम प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं तो हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आपकी बेइज्जती करे या कठोर शब्द सुनाए तो आप ही उसे वापस कठोर शब्द सुना दो। और दक्षा ने नारद को श्राप दिया, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं तुम किसी एक स्थान में नहीं रह सकोगे, दो सेकंड से ज्यादा। नारद मुनि इतने गहरे प्रभावशाली प्रचारक हैं, वो एक पर्व में ही से लोगों का उद्धार कर देते। पर नारद मुनि ने श्राप भी स्वीकार कर लिया। आगे प्रभुपाद जी तथा समझाते हैं कि अगर नारद मुनि चाहते तो इस श्राप का वो विरोध कर सकते थे, तो मुझे ये श्राप दे, मैं तुम्हें ये देता हूं, पर उन्होंने सह लिया इस श्राप को भी। तो हमें प्रचार के दौरान अत्यंत सहनशील होना चाहिए। कई दफा प्रचार में सफलता प्राप्त होती है, कई दफा सफलता प्राप्त नहीं होती। कई जगह प्रचार के लिए जाते हो, लोग आपका स्वागत करते हैं, कई जगह स्वागत नहीं करते। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि जिस प्रकार नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया, इसी प्रकार मेरे शिष्यों के माँ बाप मुझे श्राप दे रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी जब ये आंदोलन को चला रहे थे तो लोग जुड़ रहे थे, तो कईयों के माँ बाप बड़े दुखी होते थे, आपने हमारे बेटे को भक्त बना दिया, खास करके विदेशों में जहाँ की कृष्ण भक्ति का परिचय पहली बार लोगों को प्राप्त हो रहा था, तो माँ बाप बड़े दुखी होते थे कई बार। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो इनको जोड़ रहा हूँ, शुद्ध भक्त बना रहा हूँ भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। तो नारद मुनि ने श्राप को सह लिया, वो अत्यंत सहनशील थे। नित्यानंद जी भी जब उन्हें पत्थर फेंका था मदाई ने, उन्होंने सह लिया, अत्यंत सहनशील थे। और फिर जब जगाई मदाई ने देखा कि हमने इतना अपराध किया है, इतने कठोर शब्द सुनाए, पत्थर फेंका, जब भी ये सज्जन हाथ जोड़कर हमें कह रहा है हरे कृष्ण का जाप करो, तो उनका हृदय पिघलने लगा और फिर वो भी ऊंचे कोटि के भक्त बन गए। तो इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए कि इस आध्यात्मिक मार्ग में हमें भी अत्यंत सहनशील बन जाना चाहिए, और प्रचार के दौरान अगर कठिनाई अनुभव भी करना पड़े तो हमें अनुभव कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रचार करेंगे केवल अगर हमें हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो और इस प्रकार का स्वभाव होगा तो प्रचार के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो लक्षा जो ये कह रहे हैं कि भौतिक भोग ही सब कष्टों का कारण है, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए दो उपाय हैं, एक है लक्षा का कि हम भौतिक भोग में जुड़ें, फिर जब कष्ट अनुभव करें फिर हम कहेंगे अच्छा अब हम भौतिक भोग में नहीं जुड़ना चाहते। या दूसरा उपाय है कि संतों का उपदेश को स्वीकार करें, शास्त्रों के उपदेश को स्वीकार करें और शुरू से ही हम भौतिक भोग में नहीं जुड़ें। आप सुनते हो जहर पीने से जान को खतरा है, तो आप क्या जहर पीकर देखते हो जान को खतरा या नहीं? आप सुन लेते हो कि जहर पीना खतरनाक है तो नहीं पीते हैं कि नहीं? आपको पता है कि चलती हुई रेलवे के सामने खड़े हो जाओगे तो खत्म हो जाओगे, ये थोड़ी आप अनुभव करते हो। तो उसी प्रकार संतों ने और परम भगवान ने सब रिसर्च करके हमें निर्णय दे दिया है, और हमें निर्णय क्या है, सर्वधर्मा परित्यजाम अहमेकं शरणं, हम तो हम सर्वे पापे मोक्षयामि मार्गतः। तो भागवतम सुनने से भौतिक भोग की इच्छा नष्ट होती है और भक्ति की भावना बढ़ती है। हरे कृष्ण। तो आज एक महान संत माधवाचार्य कभी अविर्भाव हम अविर्भाव तिरभाव दोनों ही मनाते हैं। अविर्भाव है जब कि वो प्रकट हुआ था, तिरभाव है जब वो अप्रकट हुआ था। और माधवाचार्य प्रकट हुए थे अंदाजे से कोई 300 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले। हाँ, और उन्हें वायु के अवतार, वायु देवता के अवतार माना जाता है। 5 साल की आयु में उन्होंने दीक्षा ली थी और 11 साल की आयु में संन्यास ग्रहण किया था, और बड़े पहलवान थे। एक समय एक शेर आया था, टाइगर, उनके एक सन्यासी शिष्य को अटैक करने के लिए, और माधवाचार्य ने उस शेर को पकड़कर भगा दिया। शेर उनको देखकर उसको पकड़ लिया और उसे भगा दिया। तो हम अंदाजा लगा सकते हो कितने प्रभावशाली थे, कितने शक्तिमान थे। और माधवाचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करने के लिए। उससे पहले शंकराचार्य पकड़ हो चुके थे और माधवाचार्य ने वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की, प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इस शास्त्र का, उनकी शिक्षा का अध्ययन किया। और माधवाचार्य ने उदुपी में बड़ा प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना की थी और 8 मत खोले भारत में। और जो उनके सन्यासी शिष्य हैं वो निर्जल रखते हैं एकादशी के दिन। और उदुपी में बड़े सुंदर कृष्णा की स्थापना की है जो कि उन्हें गोपी चंदन से प्राप्त हुआ था। तो माधवाचार्य जी का सिद्धांत और हमारे सिद्धांत में अंतर नहीं। और उनका मूल सिद्धांत के मूल अंग है एक, परम भगवान ही भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्णा। और सारे वैदिक साहित्यों के द्वारा भगवान ही जाने जाते हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं विजय सर्वे रहम वेदयो। और ये जो भौतिक समाज है ये सत्य है, झूठा नहीं। झूठा केवल जब बनता है जब हम शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं, नहीं तो जब आप भगवान, जैसे हम इस समय माइक का उपयोग कर रहे हैं भगवान क्या उपदेश देने के लिए। और जीवात्मा और भगवान में अंतर है, यानी कि हम सब भगवान बन जाएंगे। और जो जीवात्मा है उसका स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, वो भगवान का सेवक है। और कई जीवात्मा मुक्त हैं और कई बंधे हुए हैं। जो बंधे हुए हैं वो मुक्त बन सकते हैं भक्ति योग के साधन के द्वारा। और असली मुक्ति है भगवान के शरणागत होना और भगवान की सेवा में जुड़ना। और शुद्ध भक्ति ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और ये ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करते हैं, छात्र के द्वारा। तो आज शुभ अवसर पर हम सब माधवाचार्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें और दृढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ सकें। हरे कृष्ण। तो क्लास खत्म नहीं हुई, अभी ऋषि कुमार प्रभु आपको आगे उपदेश देंगे माधवाचार्य के ऊपर। क्योंकि आज हमारी रोहिणी में एक मीटिंग है 9 बजे, में आगे आधा घंटा लेट पहुंचूंगा, मुझे वहां जाना है। तो ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। एक बार जोरदार कलकल ध्वनि से हम रविदास गोपाल गोस्वामी महाराज जी का धन्यवाद देंगे। रविदास गोपाल गोस्वामी महाराज के महाराज का